अब भी वक्त है भाभी को और अपने रिश्ते को इस दुश्मनी की बलि चढ़ने से बचा ले। मत चला अपने और उनके रिश्ते को नफ़रत की इस आग में। भूल जा कि वो अमरजीत ठाकुर की बेटी है, बस इतना याद रख कि वो वाइफ है तेरी। अमरजीत ठाकुर को हम मिलकर बर्बाद करेंगे, उससे तेरे हर दर्द और तकलीफ़ का बदला लेंगे, बस तू भाभी को इन सबसे दूर रख। रेहान का गुस्सा अब कुछ कम हो गया था और वो अब शान को समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शान अपनी नफ़रत में अंधा होकर सब कुछ बर्बाद कर दे। शान खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था और इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रेहान परेशान सा उसे देखने लगा था कि पता नहीं शान उसकी बात समझेगा भी या नहीं। शान कुछ पल खामोशी से सब बातों के बारे में सोचता रहा, फिर बिना किसी भाव के बोला, मैं ये सच्चाई कभी नहीं भूल सकता कि आरवीओ समरजीत ठाकुर की बेटी है, जिसने मुझसे मेरी माँ, मेरा परिवार, मेरा बचपन, मेरी खुशियाँ सब कुछ छीन लिया था। मेरे और आरवी के बीच अब कुछ भी वापस पहले जैसा नहीं हो सकता, पर मैं ये बात भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि मेरी शादी हुई है उससे। वो मेरी वाइफ के साथ साथ मेरी बेटी की माँ और उस घर की बहू भी है। उसकी इज्जत से मेरे परिवार की इज्जत जुड़ी है और ये बात मैं कल अपने गुस्से में भूल गया था। मैं कभी वो नहीं करना चाहता था जो कल मैंने किया, पर अमरजीत ठाकुर को अपने सामने देखने के बाद मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सका। भूल गया कि उसकी बेटी से पहले आरवी एक लड़की है जिसकी इज्जत को मैं भरी महफिल में उछाल रहा था। जानता हूँ जो कल मैंने किया वो गलत था और ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा, ये वादा है मेरा खुद से। आरवी को मेरे वजह से और तकलीफ ना हो ये कोशिश करूंगा, पर दुश्मनी की इस जंग से उसका दूर रहना पॉसिबल नहीं। जो दर्द मैंने उसके बाप के वजह से सहा, उसका एहसास उसे और उसके बाप दोनों को होगा, पर अब आरवी को यूं जलील नहीं करूंगा, बस उसके जरिए उसके बाप को बर्बाद करूंगा। अब अगर इससे उसे तकलीफ होती है तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बारे में इससे ज्यादा मुझे और कोई बात नहीं करनी, तो तू यहां से जा सकता है। शान ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। रेहान कुछ पल उसको देखता रहा, फिर बेबसी से सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। शान एक बार फिर अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपाकर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने आरवी का आंसुओं से भीगा चेहरा आ गया। उसने अपने चेहरे पर से अपनी हथेलियां हटाई और खुद से ही बोला, नहीं करना चाहिए था मुझे वो। अपने गुस्से में अंधा हो गया था मैं। तुम्हारे साथ वो कर गया जो कभी सपने में भी मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता था, और अब उस गलती को सुधारने का कोई तरीका नहीं है। जानता हूं बहुत हर्ट किया मैंने तुम्हें। आई प्रॉमिस कि आगे मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारे ऊपर किसी की बुरी नजर उठे। तुम्हारे बाप को तुम्हारे हाथों बर्बाद करवाऊंगा, पर तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। भले ही अब हमारे बीच कुछ ठीक नहीं हो सकता, जो कड़वाहट मेरे मन में तुम्हारे अस्तित्व को लेकर भर चुकी है अब उसे मिटाना नामुमकिन है, पर उस कड़वाहट को तुम्हारे मन में घुलने नहीं दूंगा। तुम्हें मेरा प्यार भले ना मिले, पर इज्जत जरूर मिलेगी, ये वादा है मेरा खुद से। शान ने मन ही मन निश्चय किया, फिर ब्लैंक पेपर लेकर उस पर कुछ लिखने लगा। उसके बाद काम में लग गया। शान का सारा दिन यूं ही निकल गया, शाम को भी वो घर नहीं गया। दूसरी तरफ घर पर आरवी का आधा सुभाजी और अर्पिता जी के साथ बीता, फिर अंशु के साथ उसका बाकी का वक्त निकल गया। रात हुई पर शान नहीं आया, किसी ने उसे फोन भी नहीं किया। आरवी ने अंशु की बात करवाई, शान ने कह दिया कि आज घर नहीं आएगा। सबने खामोशी से डिनर किया, फिर आरवी ने सुभाजी के पैरों की मालिश की, उसके बाद अंशु को सुलाने चली गई। शान और आरवी दोनों की आज की रात बेचैनी से कटी, तो रश्मि और रेहान की भी आज कोई बात नहीं हुई। अर्जुन और सृष्टि का भी यही हाल था। अर्जुन कल की वजह से काफी डिस्टर्ब था, इसलिए वो आज रात घर ही नहीं गया था। कल से ही अमरजीत जी से उसकी कोई बात नहीं हुई थी और ना ही सृष्टि के ही कॉल्स का उसने कोई जवाब दिया था, जिस वजह से सृष्टि भी कुछ परेशान था, क्योंकि वीडियो उसने भी देखी थी और वो इसलिए अर्जुन से बात करना चाहती थी। सबकी आज की रात भी बेचैनी से कटी। अगला दिन निकला और बेमन से वो अपने अपने कामों में लग गए। आरवी ने अपना सारा काम पूरा किया, फिर अंशु को स्कूल छोड़ने के बाद अकेडमी के लिए निकल गई। जिस हॉल में वो डांस क्लास लेती थी, अभी वो वहां पहुंची ही थी कि वहां काम करने वाला एक लड़का उसके पास आकर बोला, मैडम आपको सर ने बुलाया है। उसकी बात सुनकर आरवी कुछ हैरान हो गई और आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, मुझे बुलाया है। उस लड़के ने तुरंत ही हामी भरते हुए कहा, जी आपको ही बुलाया है। आरवी कुछ परेशान सी हो गई और सोच में पड़ गई कि उसे क्यों बुलाया गया है। फिर उसने अपना सर झटका और हामी भरते हुए बोली, अच्छा आप चलिए मैं आती हूँ। उसकी बात सुनकर वो लड़का वहां से चला गया। आरवी ने अपना दिल मजबूत किया और विराज के चैम्बर की तरफ बढ़ गई। गेट के बाहर खड़ी होकर वो कुछ पल सोचती रही, फिर उसने गेट नॉक कर दिया। अंदर अपनी चेयर पर बैठा विराज उसका ही इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत ही कुर्सी पर से खड़े होते हुए कहा, आ जाइए मिसेज आरवी मल्होत्रा।
आरवी अपने लिए ये संबोधन सुनकर और ज्यादा परेशान हो गई। यही वजह थी कि वो कल नहीं आई थी, पर कितने दिन तक छुप कर रहती। हालातों से भागना तो इस प्रॉब्लम का सलूशन था ही नहीं, उसे प्रॉब्लम को फेस करना ही था। यही सोचकर आरवी ने दरवाजा खोला और कैबिन में कुछ कदम आगे आने के बाद नजरें झुकाते हुए बोली, सर आपने मुझे बुलाया। विराज ने तुरंत ही हामी भरते हुए मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, और आप वहां क्यों खड़ी हैं, आइए यहां बैठिए। विराज ने खुद उसके लिए चेयर पीछे खींचते हुए बड़े ही इज्जत से उसको बैठने के लिए कहा, पर आरवी को ये सब जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं पसंद था उसे कभी से, और अब तो उसे चिढ़ हो रही थी। उसने खुद को शांत रखते हुए आराम से बोली, सर मुझे बैठना नहीं है, आपको जो काम से ऐसे ही बता दीजिए। अरे भाई आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, आकर बैठिए तो सही। विराज की जिद करने पर आरवी को ना चाहते हुए भी बैठना ही पड़ा। उसे बिठाने के बाद विराज भी अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, तो आप शांतनु मल्होत्रा की वाइफ हो? कल के शान का अनाउंसमेंट के बाद ये बात सबको पता चल ही चुकी थी, अब छुपाने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए आरवी ने हां में सर हिलाते हुए कहा, जी। विराज ने हल्की हैरानी से कहा, हैरानी की बात है कि आप शान की वाइफ है और आपने कभी ये बात हमें पता भी नहीं चलने दी। इससे भी हैरानी की बात यह है कि मशहूर प्रोड्यूसर शांतनु मल्होत्रा की वाइफ होते हुए आप यहां हमारी एकेडमी में काम करने आई, स्ट्रेंज। आरवी ने उसकी बात पर सहजता से जवाब दिया, मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती थी, वो भी बिना उनके नाम का सहारा लिए, जिसमें उन्होंने भी मेरा साथ दिया, इसलिए मैंने हमारे रिश्ते को जाहिर नहीं होने दिया। आरवी की बात सुनकर विराज ने मुस्कुराकर कहा, नाइस, ये तो अच्छी बात है और आप में टैलेंट भी है, इसलिए आपको आगे बढ़ने के लिए किसी के नाम का सहारा लेने की जरूरी भी नहीं है। वैसे आपकी लाइफ काफी ट्रेजिक और सरप्राइजिंग है। आरवी विराज की बात का मतलब नहीं समझ सकी और परेशान निगाहों से उसे देखते हुए बोली, क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ, देखिए आप ठाकुर खानदान की बेटी है, पर एक हादसे में उनसे अलग हो गई, एक आम लड़की की तरह पली बढ़ी और फिर शादी हुई शांतनु मल्होत्रा से, जो किसी भी मायने में ठाकुर खानदान से कम नहीं है, और अब आपको अचानक ही अपने असली परिवार का पता चला, थोड़ी फिल्मी स्टोरी है नहीं?
विराज मुस्कुरा रहा था, वहीं आरवी के चेहरे पर अजीब सा दर्द उभर आया था जिसे छुपाते हुए वो फीका मुस्कुरा दी। विराज ने न्यूज याद करते हुए कुछ कन्फ्यूज लहजे में पूछा, वैसे आपकी और शान की शादी को सच में 5 साल हो गए? नहीं मतलब आपको देखकर ऐसा लगता नहीं, और आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी आप अभी बस 21 के ही हैं। विराज का सवाल सुनकर आरवी कुछ पल खामोश रह गई। शान के कहे झूठ को सच बनाने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था उसे। कुछ देर सोचने के बाद उसने सहजता से जवाब दिया, वो मेरे डॉक्यूमेंट में गलत सन डला हुआ है, मैं 23 की हूँ और 24 की होने वाली हूँ इस साल, हमारी शादी जब मैं 19 की थी तब हुई थी। ओह, कुछ देर अब वहां खामोशी छाई रही, फिर आरवी ने गंभीरता से पूछा, सर आपको यही काम था या और कोई बात थी? नहीं बस यही बात करनी थी, तो मैं जाऊं? आरवी तुरंत ही वहां से निकल गई। कैबिन से बाहर निकलने के बाद उसने गहरी सांस छोड़ी, फिर वापस हॉल की तरफ बढ़ गई। आरवी का आगे का आधा नन काम में निकला, पर आज उसका यहां काम करना काफी मुश्किल हो गया था। जिसे देखो उसकी जुबान पर कल का जिक्र था, पर नजर उसे अजीब तरह से देख रही थी। जिन्होंने शान और उसके डांस की वीडियो देख ली थी, उनकी नज़रों में गंदगी साफ नजर आ रही थी, और वहां उसी का जिक्र भी हो रहा था। स्टूडेंट से लेकर बाकी के डांस टीचर तक, सबके बीच आरवी बात का टॉपिक बनी हुई थी। आरवी के लिए वहां रुकना बहुत मुश्किल था। आज फिर उसे वही ह्यूमिलिएशन फील हुआ जो परसों पार्टी में हुआ था। वहां से तो वो बर्दाश्त न होने पर भाग गई थी, पर यहां से कहीं जा भी नहीं सकती थी। जैसे तैसे उसने यहां आधा दिन काटा। उसने अपना लास्ट बैच खत्म किया ही था कि ड्राइवर जैसी ड्रेस पहने एक आदमी उसके पास आ गया। आरवी ने सवालिया निगाहों से उसे देखा, क्योंकि वो उसे जानती नहीं थी, जबकि रोज उसके लिए जो ड्राइवर आता था वो उसे बहुत अच्छे से जानती थी, और वो तो बाहर ही उसका इंतजार करता था। जी आप कौन? पहचान न पाने की सूरत में आखिर में आरवी ने उनसे सवाल ही कर लिया। उसका सवाल सुनकर उस ड्राइवर ने बड़ी ही इज्जत के साथ जवाब दिया, मैडम सर ने आपके लिए गाड़ी भिजवाई है। उसका जवाब सुनकर आरवी को कुछ अटपटा सा लगा कि शान आज उसके लिए गाड़ी क्यों भिजवा रहा है। फिर कुछ सोचकर उसने हामी भर दी और ड्राइवर के साथ आगे बढ़ गई। टू बी कंटिन्यूड।